नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलदार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, मौत की सुनसान सुनी वादियों में फिर, कि नूतन सर्जना के राग भर दे, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर, दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशाले जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।
ओम शांति। भट्टी का 28वां दिन। तीन सूत्रों पर यह भट्टी चल रही है। पहला स्वाध्याय, स्वयं को देखना। स्वाध्याय साक्षी होकर देखना। स्वाध्याय जो कहानी यहां बताई जा रही है उसे केवल सुनना नहीं, आंखों से देखना, अनुभव करना। दूसरा सुबह की साधना 2 से 5, और तीसरा SFV सॉलिड फूड वैकेशन, जो कुछ ग्रहण करना उसे केवल पीना, चबाना बंद। तो 28वें दिन में प्रवेश, जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन समय ने आंखें खोली, इंसाफ 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 होगा। बहता क्या आंख में उम्मीद नहीं है, आंसू का मोल तो है खरीद नहीं है, तराजू उठेगा तो इंसाफ होगा, होगा होगा इंसाफ होगा, इंसाफ 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 होगा। बहती नदियां रुकती नहीं है, डूबा डूबा तारा तारा डूबा तो भी मुक्ति नहीं है, गर्दन पर है कर्ज लहू का, गर्दन देकर ही माफ होगा, इंसाफ 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 होगा। जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, इंसाफ 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 होगा। पांडवों के साथ स्वयं भगवान है महाभारत में, फिर भी बचपन से लेकर तो अंत तक उनके साथ क्या हुआ? अन्याय और इंसाफ हुआ? पांडवों की जीवन कहानी बचपन से तो बड़े होने तक क्या है उसमें? संघर्ष। सारा जीवन कहाँ बीता? राजमहलों में या जंगलों में? जन्म कहाँ हुआ? जंगलों में। आए फिर गुरुकुल, फिर आए और फिर षड्यंत्र ही षड्यंत्र। कितना एक विचारणीय बात है ये कि भगवान जिनके साथ है उनके जीवन में मुसीबतों के सिवा कुछ दूसरा है ही नहीं। भगवान पग पग पर साथी है, पर पग पग पर अन्याय ही अन्याय। बचपन में जहर दे दिया गया, कई बार आक्रमण हुए, कई सारे षड्यंत्र रचे गए, कई बार उनको जला देने का प्रयत्न कर दिया गया, लाक्षाग्रह, वहां से छूटे जंगल, भटकते फिरे यहां वहां, वापस आए, वापस राज्य का बंटवारा हुआ, उनको क्या मिला? खांडव प्रस्थ, चलो ये भी ठीक। बंजर भूमि को क्या बना दिया? इंद्रप्रस्थ, पर फिर से ईर्ष्या, फिर से दावपेच, फिर से षड्यंत्र, फिर से द्रौपदी, कीरहरण, सारा राज्य खो दिया, सब खो दिया, फिर से वनवास। वो भी ठीक, वापस आ गए, अब दे दो राज्य, सुई की नोक इतना भी नहीं दूंगा। फिर लड़ाई, मामका पांडवश्चैव किं कर्तु संजय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये क्या हो रहा है? ये ऐसी कहानी है पांडवों की। तो संसार में ऊपर से तो दिख रहा है अन्याय हो रहा है, ऊपर से तो दिख रहा है क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, परंतु कहीं ना कहीं वहां पर कल्याण छिपा हुआ है। भगवान की मदद का अनुभव कब होता है? सुख सुविधाओं में, दुख में, दर्द में, पीड़ा में। और संसार का तो यही दस्तूर है, जो आगे जाता है उसे नीचे खींचा जाता है। किसी राज्य में एक राजा बाहर निकला टहलने के लिए, उसे कांटा चुभ गया। उसने तुरंत मंत्रिमंडल बुलाया कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया, कुछ करो। विद्वानों की सभा भरी, किसी ने कहा ऐसा होना ही चाहिए, आप महाराजा है, पूरी धरती को चमड़ी से ढक दो। किसान परेशान होकर कहने लगे कि ऐसा अगर हो गया तो फसल का क्या होगा। भागते भागते राजा के पास गए, रुको, ऐसा ना करे, हमारा क्या होगा, कोई दूसरा उपाय। फिर से मंत्रिमंडल, फिर से चिंतन चिंतना, मंत्रणा, चर्चाएं, सब कुछ हुआ। और आखिरकार सभी विद्वानों ने मिलकर एक दूसरा उपाय निकाला, और दूसरा उपाय ये था कि इस धरती पर जितने कांटे हैं सारी धूल को झाड़कर हटा दो। महाअभियान चालू हो गया, सफाई, धूल ही धूल, बवंडर उठने लगे धूल के, लोगों को खांसी, हालत खराब हो गई, अभी भी आ रही है बीच बीच में, इतना धूल, इतनी धूल, इतनी धूल कि फिर लोग गए, रोको, कुछ दूसरा उपाय। फिर से मंत्रिमंडल, और फिर नया उपाय, पूरी धरती को पानी से ढक दो ताकि कांटे जो होंगे वो बह जाएंगे, सारे तालाब, नदी, समंदर, पानी डालो, कीचड़ ही कीचड़ मच गया, लोग बीमार पड़ने लगे। फिर लोग गए कि रोको इसको, कोई दूसरा उपाय। सारे विद्वान थक कर हार गए। एक बूढ़ा व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज मैं आपके लिए जूते बना के लाया हूं, अगर आप इसको पहन ले तो समस्या खत्म हो जाएगी। जूते वो देता है, राजा खुश हो जाता है, ये हमने अब तक क्यों नहीं सोचा, मेरे इतने सारे बुद्धिमान लोग और ये अनपढ़ गवार, इसने ये उत्तर निकाल लिया। राजा बहुत, परंतु इससे पहले कि राजा बहुत खुश हो जाए, वो सारे बुद्धिमान लोग, वो सारे मंत्री आपस में मिलते हैं और ईर्ष्या से भर जाते हैं और राजा के कान भरते हैं कि ये जो व्यक्ति है बहुत खतरनाक है। इतनी आसानी से हल लेके आया, जरूर इन जूते में जादू है। और ऐसा भड़काते कि राजा क्रोधित हो जाता है और उस व्यक्ति को सूली पर चढ़ा दिया जाता है, मंसूर को मार दिया, ईसा को सूली पर चढ़ा दिया, सुकरात को जहर दे दिया, मीरा को जहर दे दिया गया। सोए हुए लोगों को जो जो जगाएगा, जगाने वाले से प्यार होता है कि क्रोध आता है? हम अच्छे से सो रहे, अच्छी सी नींद, और कोई आके उठो अमृत वेला चलना है, एक पल के लिए तो उसके प्रति क्या होता है, पर कुछ कह नहीं सकते, अपनी अपना वो क्रोध अंदर ही दबा देते हैं। इंसाफ 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 होगा, परंतु इंसाफ एक दिन होगा, देर है अंधेर नहीं, विजय सत्य की ही होगी। तो कहां तक पहुंचे थे हम? 39 चालू था, 7 मार्च क्या हो गया था, एक के बाद एक तूफान चालू है, 7 मार्च का तूफान पूरा हुआ, अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पुलिस की गाड़ी आई और सबको पकड़ कर लेके गई। इतना आसानी से सहन करेंगे इतना बड़ा अपमान? अब तो पूरी हवाओं में नफरत है, हेट्रेट है। इसलिए उन सब ने क्या किया, अब गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना चालू किया कि कुछ भी करो पर इस ओम मंडली को बंद करो किसी भी हालत में। नफरत, घृणा। और एक सूक्ष्म बात जो पहले बताना भूल गई थी, बाबा का जो साथी था सेवकराम, वो भी बाबा के खिलाफ हो गया था बाद में, क्योंकि उसने अपना एक स्टेटमेंट ओम मंडली को दिया, वो एंटी ओम मंडली को दिया था। वो स्टेटमेंट क्या था, उसका ये कहना था कि मैं बाबा को, दादा लेखराज को कई सालों से जानता हूँ और मुझे पता है वो बनारस गए थे और बनारस में जाके एक साधु से उन्होंने हिप्नोटिज्म सीखा 10,000 रुपयों में। सेवकराम खूबचंद दासवानी, ऑन सोलम अफर्मेशन दैट आई हैव नोन लेखराज खूबचंद फाउंडर ऑफ ओम मंडली सिंस लास्ट 35 ईयर्स, मैं उनको 35 साल से जानता हूँ, दैट आई वॉज हिज पार्टनर इन द कंसर्न ऑफ लेखराज सेवकराम एट कलकत्ता। वो कहता है कि 8 साल पहले हम दोनों एक जगह से जा रहे थे जहाँ पे एक साधु था, वो रहस्यमय साधु था और दादा लेखराज उसको बार बार मिलते थे और 10,000 रुपये उन्होंने बैंक अकाउंट से निकाले और उस साधु को दिए। And that I know it is for the fact that he did not live a pure moral life. ये उनका जो साथी था उसका recorded statement है, कहाँ पर, ओम मंडली, एंटी ओम मंडली के इसमें records में, जिसके साथ कितना समय काम किया, 35 years। हर दिन अखबार में कुछ ना कुछ लिख के आ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में कोई अचल रहे, कितनी बड़ी खूबी है, कितना निश्चय है। कोई हमारे खिलाफ अगर 10 पेज का एक लेटर दे दे हमारे सीनियर्स को, उसमें सब बातें लिखी हुई है ज्ञान युक्त, तो उस समय सीएम है अल्लाह बख्श, ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे अल्लाह बख्श, इनको यहाँ तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे टाइटल्स दिए थे और उसमें से एक टाइटल था बहादुर, खान बहादुर का, पर इन्होंने ये टाइटल वापस कर दिया, नहीं चाहिए। और ये जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आज़ाद, ये तीनों लोग टू नेशन थियोरी के खिलाफ थे, मतलब भारत का बंटवारा ना हो, अखंड भारत रहे, टू नेशन थियोरी जो है इसके खिलाफ थे, क्योंकि इन्होंने सोच लिया था कि क्या क्या परिणाम हो सकता है इसका, इसलिए उन्होंने, क्योंकि भारत तो तब एक ही था, अखंड भारत है, ये जो टाइटल्स ब्रिटिश ने दिए थे उसको वापस कर दिया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अल्लाह बख्श सुमरों का बड़ी तारीफ की थी रेडियो पर इस डिसीजन के लिए। तो वो जो सीएम था इसने इस पर बहुत प्रेशर दिया, किसने, एंटी ओम मंडली ने, क्या कहा इसको कि ये जो सिंध की मिनिस्ट्री है इसमें दोनों हिंदू और मुस्लिम, अगर तुमने इसको डिसबैंड नहीं किया, बैन नहीं किया ओम मंडली को, तो हम लोग क्या कर देंगे, रिज़ाइन कर देंगे सारे हिंदू, और हिंदू अगर रिज़ाइन कर दे तो पूरी वो जो मिनिस्ट्री हो ख़त्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और धीरे धीरे जो मुस्लिम लोग थे उनको भी भड़काने लगे। तो पर इतना होने के बाद भी ये जो सीएम थे बहुत पावरफुल सीएम थे, इनका जो भाषण है वो भाषण दिया गया 24 मार्च 1939 इन द सिंध पार्लियामेंट में, इसका इस किताब में वर्णन है, आप सब ने पढ़ा भी होगा। क्या कहा उन्होंने उसमें, जगदीश भाई लिखते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मंत्रिमंडल के हिंदू सदस्यों ने हमें त्यागपत्र की धमकी दी है, परंतु हम किसी भी धमकियों से डरने वाले नहीं है। यह सीएम का स्टेटमेंट है, हम किसी भी धमकियों से, हरेक को अपने धार्मिक मान्यता के अनुसार सत्संग या साधना करने का कानूनी अधिकार है। हम कैसे, रिलीजन राइट है, हर व्यक्ति किसी की भी पूजा कर सकता है, पत्थर की करो, मूर्ति की करो, जानवर की करो, जिसकी करना है करो, कोई रोक सकता है क्या, ये राइट है हर व्यक्ति का। ओम मंडली पर प्रतिबंध किस धारा के अंतर्गत लगाया जाएगा, और धारा लगी 144 की धारा लगा दी यहां पर, 144। उन्होंने हजरत मोहम्मद का उदाहरण देते हुए तथा अन्य सुधारकों का हवाला देते हुए यह भी कहा कि शुरू में वो लोग भी संख्या में थोड़े थे और उन पर भी लोगों ने बहुत अत्याचार किए थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दादाजी से जो भी जायज मांग की जानी थी उन्होंने पूरी की। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तव में जाति तो ओम एंटी ओम मंडली कर रही है, परंतु अंत में जब उन्होंने अपने मंत्रिमंडल इसी कारण से टूटते देखा तो थोड़े से झुक गए, और फिर एक ट्रिब्यूनल नियुक्त किया गया। तो इनका भाषण बहुत अच्छा था, प्रसिद्ध भाषण है, परंतु इन्होंने जब देखा कि मंत्रिमंडल ही टूट रहा है तो ये भी कुछ नहीं कर सके, ये भी कमजोर पड़ गए अंदर से, और फिर ट्रिब्यूनल बना, और ये ट्रिब्यूनल बहुत ही खतरनाक था। ट्रिब्यूनल क्या कहता है, ट्रिब्यूनल कहता है 144 धारा, अर्थात क्या है ये 144, एक है कर्फ्यू, एक है 44 की धारा, ये दो अलग अलग है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्या कहती है ये धारा, सीआरपीसी की ये जो धारा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये जो है ये कहती है कि 5 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, एक। दूसरा, किस लिए लगाई जाती है, सुरक्षा, या कोई बीमारी है या कोई दंगे की संभावना है, तब 144, अगर इसको कोई तोड़ता है तो 3 साल अंदर। कितना समय तक लगाई जा सकती है धारा, 2 महीने से ज्यादा नहीं, फिर कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को। हाँ, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में 6 मास चल सकती है, बट अदरवाइज 2 मास से ज़्यादा नहीं लगाई जा सकती है धारा। कर्फ्यू अलग होता है, कर्फ्यू में टाइमिंग होता है, इतने से इतने बजे तक बाहर नहीं निकलना, वैसे वैसे, ये अलग है। तो ओम मंडली, एक ट्रिब्यूनल बिठाया गया, और ट्रिब्यूनल क्या कहता है, एक एक्स पार्टी डिसीजन दिया, एक्स पार्टी अर्थात एक तरफ के ही पार्टी का सुना जाए बस, और उन्होंने जगह उसको मान लिया जो दूसरी पार्टी को इन्वॉल्व ही ना किया जाए। एक्स पार्टी डिसीजन दिया कि आज के बाद ओम मंडली के सदस्य एक साथ नहीं रहेंगे, ये था फाइनल डिसीजन, मतलब एक रीति से बैन करने जैसा ही था ये, कि एक साथ ये लोग नहीं रहेंगे, 144 की धारा लागू। पर इसमें एक था, कि इसके जो मेंबर्स थे किसके ट्रिब्यूनल के, उसमें दोनों लोग होने चाहिए, पर इसमें कौन थे सारे, उनके ही लोग थे। पहली बात, सिंध ऑब्जर्वर नाम का न्यूज़पेपर है, उसका एडिटर है चार्ल्स लोबो, और जो शुरुआत से ही ओम मंडली के खिलाफ है। चार्ल्स लोबो ओम मंडली का सिंध ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर जो है, जिसने शुरुआत से ही ओम मंडली के खिलाफ लिखा है, उसका जो एडिटर है वही इसका प्रमुख मेंबर है। और कौन मेंबर है इसके, वो सारे लोग जो कि एंटी ओम मंडली के, बाकी ये तो होना चाहिए, या तो होना चाहिए कोई अंग्रेज या तो निष्पक्ष हिंदू, ओम मंडली का कहना था ऐसा कोई रखो, और इनका तो कोई लिया ही नहीं उसमें, ओम मंडली वालों का कोई भी नहीं लिया, तो उन्होंने कहा ये तो अन्याय है, परंतु उनका किसी ने नहीं सुना। पत्र लिखे गए पर वो पत्र किसी ने सुने नहीं, न माने न देखे। तो इस तरह से ये ट्रिब्यूनल बना, और ओम मंडली ने कहा हमारा कोई लॉयर नॉट अलाउड, ओम मंडली ने कहा हम अपने विटनेस देंगे नॉट अलाउड। अच्छा, ये ट्रिब्यूनल क्या कार्रवाई करेगी, उसका कोई रिटर्न स्टेटमेंट तुमको नहीं बताएंगे, जो करना है डायरेक्ट तुमको करना पड़ेगा बस। कई लोगों ने कहा पर्सनल लेटर्स भेजे, और हाँ कुछ न्यूज़पेपर थे सिंध गैजेट नाम का, उसने इसका बड़ा आलोचना की ये ट्रिब्यूनल की, ये गलत है, ऐसे कैसे कर सकते हो आप, तो टेंस एटमॉस्फेयर है। तो ऐसा ये ट्रिब्यूनल बना। आगे क्या हुआ, ओम मंडली ने कहा कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसकी कोई भी मीटिंग होगी या कुछ भी होगा उसमें, क्योंकि ये यूनिलैटरल डिसीजन है, हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। पर किसी ने कुछ भी नहीं सीखना, यहाँ तक कि गवर्नर को भी एक लेटर भेजा गया कि ऐसा हुआ है, परंतु कुछ भी नहीं बताया, और इनको ये भी नहीं बताया गया कि ये लोगों ने कौन से विटनेस तैयार किए, उन विटनेस ने क्या गवाही दी, एविडेंस क्या है, कुछ भी नहीं। वो उनकी मीटिंग्स होती रही, ट्रिब्यूनल बन गया और उनका अपना हो गया, पर इनको इन्वॉल्व ही नहीं किया गया उसमें, और लास्ट में ये ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला गया कि आप लोगों को अलग हो जाना है। जगदीश भाई लिखते हैं कि कैसे अलग हो, क्योंकि ये मंडली में तो सब लोग, कोई माँ है उसके बच्चे साथ में, पति पत्नी साथ में, अब ये अलग अलग कैसे रहे, ये कोई दूसरे दूसरे कम्युनिटी के तो लोग हैं नहीं, एक एक परिवार के परिवार है उसमें, ये कैसे हो सकता है। पर ये होने के बाद में भी ये जो CM था, इसका बड़ा रोल है हमारी इस यज्ञ में, उसने कुछ सजेशंस दिए ऑफ रिकॉर्ड अनऑफिशियल, कहा कि आप लोग ऐसा करो कुछ बंगले जो है वहीं रहो, अलग अलग रहो थोड़े समय के लिए, और आपका जो ये संस्था है ओम मंडली, इसका नाम बदल दो, इसका नाम बदल दो। इसलिए हमने कहा 5S ब्रह्मा कुमारी से, सत्संग से शुरुआत हुई, स्कूल बनी, समिति बनी, कमिटी, समिति में कितने लोग थे 8, फिर 11, फिर 9, फिर 11, और बाद में फिर 17 लोग हो गए। टोटल समिति के लोग थे 17, एक मेल, उसकी लिस्ट है, वो बहुत बड़ी लिस्ट है, टोटल ओम मंडली के मेंबर्स की बड़ी लिस्ट है, कितने लोग थे, मैरिड कितने थे, अनमैरिड कितने थे, एज क्या थी, वो पूरी लिस्ट है बनी हुई। तो टोटल 17 लास्ट तक, और वो जो बंगले कितने थे वहाँ पे, बंगलो 5, और बाद में कितने हो गए 8 बंगला, तो वो 8 हो गए। तो उस CM ने कहा कि आप लोग शांति से रहो जब तक ये जो क्या कहेंगे इसको, शांत ना हो जाए थोड़ा। मौखिक रूप से उन्होंने ये दिया, आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा, ये हम हटा देंगे, पर आप अभी शांत रहो। और एक ये भी सजेस्ट किया, ये जो नाम है संस्था का ओम मंडली, इसको बदल दो। यहाँ से ही प्रेरणा हुई इसका नाम बदलने की, और जो उस दिन कहा था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये नाम कब आया, उस दिन हमने कहा था लगभग 45 के आसपास, क्योंकि 49 का जो चित्र है साइकिल का, चक्र का, उसमें एड्रेस कौन सा दिया हुआ है, जो उस दिन भी एड्रेस सुनाया था उसमें एड्रेस लिखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ओम मंडली एड्रेस नहीं है उस समय, यह एड्रेस दिया हुआ है। तो यहीं से शायद वो नाम थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, 39 की ये बातें चल रही है, तो 39-45 के बीच। पर यज्ञ जो समय वहाँ बिताया गया कराची में, उसको कहते हैं यज्ञ, सैक्रिफिशियल फायर, ये एस, फोर्थ एस, और फिफ्थ संस्था। सो सत्संग से स्कूल, स्कूल से समिति, समिति से सैक्रिफिशियल फायर या यज्ञ, और सैक्रिफिशियल फायर से संस्था। संस्था का रूप आबू आने के बाद हुआ। तो ये सारी चीजें। अब ये जो लोग थे दूसरे, ये शांत कैसे हो गए? सब कुछ कर लिया और दो परीक्षाएं बाकी है, वो कल और परसों लेंगे। ये उसके बाद अगले 10 साल के लिए शांति है, अगले 10 साल के लिए 1940 से 1950 तक एक दूसरी तपस्या का वायुमंडल चालू होगा, 10 ईयर्स, टोटल 11 ईयर्स लगभग। बट वो कैसे शांत हो गए? क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस इन्होंने एक और चीज़ कर दी, जितने न्यूज़पेपर थे उन सबको कहा कि इनको डोनेशन देना ही नहीं, क्योंकि बाबा के पास पैसे कितने थे उस दिन भी सुनाया था, 10 लाख तब के। ओम निवास बांधने के लिए कितना खर्चा किया था? 1 लाख, कई जगह लिखा है 70,000। ओ स्कूल, ओम हाई स्कूल, अभी तो यहाँ आ गए, ये तो किराए पर लिया हुआ है कराची का। तो वो अभी वो एक जो जज है हरदयाल हार्डी, उन्होंने अपने अभिलेख में लिखा है कि ऐसा है, उनका कहना है ऐसा, वो ज्ञानी मतलब वो इसमें नहीं है कहीं अटैच, बट वो बड़े सहयोगी है, उन्होंने अपने जीवन ये लिखा है लेख में कि ऐसा था। उन्होंने बाद में ये भी लिखा, फिर बाद में ये संस्था माउंट आबू चली गई, बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं, ऐसा उनका एक लेख है। उसमें टोटल एसेट्स ऑफ दादा लेखराज एट अराइवल इन हैदराबाद, अपना बिजनेस सब समेटने के बाद, वो एग्जैक्ट कितना है कुछ पता नहीं। तो फिर बाबा ने कहा ठीक है, ओके, स्वीकार कर लिया इस डिसीजन को, और सब अलग अलग रहने लगे। बाबा, उनका परिवार एक बिल्डिंग में, ओम राधा माता एक बिल्डिंग में, बच्चे भाई अलग अलग बिल्डिंग में, सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए। परंतु यज्ञ का जो कुछ चालू था कारोबार, जो तपस्या, वही क्लिफ्टन पर जाना सुबह सुबह, वो सब चालू था, मतलब तपस्या जारी थी। और ये जो एंटी ओम मंडली वाले, उन्होंने क्या सोचा कि इनके पास पैसे कभी तो ख़त्म हो जाएंगे ना, कब तक चलेंगे पैसे, कोई कमाने वाला तो है नहीं, और न्यूज़पेपर में दे दिया इनको कोई भी डोनेशन नहीं देना। एड़ी चोटी का जोर लगाया है, सब कुछ किया है रोकने के लिए, बैन करने के लिए, कोई भी पैसे नहीं देगा। और कहा कि आपस में रह रहे ना तो झगड़े तो होंगे, और ये जो ऐसी जो इनका जो भ्रम है ये कभी तो टूटेगा, और फिर अपने अपने घर चुपचाप शांति से चले जाएंगे, ये उनका धारणा थी। इसलिए उन्होंने फिर धीरे धीरे वो भी कराची से अपने घर वापस हैदराबाद शिफ्ट हो गए। कब तक वहाँ देखते रहेंगे उनको? और जो कन्याएं, नाबालिग कन्याएं थी जो अपने घरों पे थी, उन्होंने बाहर का खाना नहीं खाना, मतलब मीट और ये सब कुछ सिंपल रहना, और फिर धीरे धीरे उनके माँ बाप भी तंग हो गए, और फिर रात लास्ट में उन्होंने भी लेटर दे दिया, जाओ जो करना है करो। तो नाबालिग कन्याएं भी वापस चली गई। दूसरी एक बात, तो ये तो हो गया थियरी पार्ट। और एक बात जो पीछे बताना भूल गए थे, ये जो ओम मंडली, एंटी ओम मंडली बनी थी, हमने कहा था 21 जून को बनी थी, और 21 जून को ही क्या हुई थी, फायरिंग, फायर। बट वो 21 जून को नहीं, एक दूसरा सोर्स कहता है वो मई में तैयार हो गई थी, मई, दिस इज मोर करेक्ट, 38 में, ताकि फिर 21 जून को पिकेटिंग हुई, और फिर उसके बाद में 7 अगस्त को क्या हुआ, 7 अगस्त को पिकेटिंग, उसके पहले फायर, इसलिए सत्संग भवन को, लाखा भवन को बदल के ओम निवास में चले गए थे। तो ये थोड़े मिसिंग लिंक्स थे। अभी ये तो हो गया थियरी पार्ट, अब इससे सीखना क्या है, क्या सीखेंगे? समस्या आएंगी वो तो सब ठीक है, परंतु जब हमारे साथ अन्याय हो रहा है ऐसा हमें लगे तो क्या करना चाहिए, ये है लर्निंग पॉइंट्स। हमें लग रहा है हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, अब ये थी हिस्ट्री भूल जाओ, अपने जीवन में आ जाओ, अभी यहाँ जहाँ हम है ब्राह्मण जीवन में, इस परिवार के बीच चाहे सेवा केंद्र, चाहे ऑफिस, चाहे गृहस्थी, चाहे मधुबन, कहीं पर भी हमें ऐसा लग रहा है हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? अपने निश्चय को पक्का रखना और हर चीज़ में कल्याण है। जैसे एक व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है, उसके घर में घुस के और वहाँ से भागने लगता है, उसके पीछे लोग भागने लगते हैं, वो भागने लगता है, बहुत क्रूयल व्यक्ति है वो, भागता है भागता है, बहुत खंडरों में कहीं छिप जाता है, उसको लगता है अब मैं सुरक्षित हूँ। सुबह निकलता है तो एक व्यक्ति उसको पहचान लेता है, ये वही है, फिर भागने लगता है, फिर जंगल में जाता है। जंगल में जाता है तो वहाँ उसे शेर की दहाड़ सुनाई देती है, झाड़ पर चढ़ जाता है छिपने के लिए ऊपर, और झाड़ पर चढ़ता है तो एक अजगर वहां पर, सोचता है अब क्या करूं, और उसको सामने नदी दिखती है, नदी में कूद जाता है, नदी में कूद जाता है, वहां पे मगरमच्छ वो उसको पकड़ के खा जाता है। कर्मा हिट्स बैक, कोई भी छूट नहीं सकता। जो भी हम कर रहे हैं, कर्म फिलॉसफी क्या कहती है, कर्म वापस आएगा, कोई भी छूट नहीं सकता। और इस ड्रामा में अन्याय हो नहीं सकता, और हम अगर पांडव है और भगवान साथ है तो ज्यादा होगा, क्योंकि भगवान एक दूसरी एक सोचने की बात है, ये परमात्मा यज्ञ है, उस इतनी गड़बड़ हो रही है, इतना लोग विरोध कर रहे हैं, अगर वो चाहता तो ये रोक को, ये विरोध को रोक नहीं सकता था, अगर वो चाहता तो कितना स्मूथ इसको ले जा सकता था, सबकी बुद्धि घुमा के, फिर भी इतना सबको सहन करना पड़ रहा है, कोई मर रहा है, क्या क्या हो रहा है, फिर भी वो चुपचाप है, साक्षी है, और वो कहता है मेरा तुमसे बहुत प्यार है, तुम्हारे बिना मुझे सूना सूना लगता है, और ये एंटी वो मंडली और ये पिकेटिंग और ये फायरिंग और वो कल बताया था क्या मेंढा रैम और मुझे तुमसे बहुत प्यार है, वाह बच्चे वाह, और ये क्या है फिर, यही प्यार है, हाँ दिल से कहो बाबा तो बाप हासिर है, और समस्या देखो कितनी है, जरूर उसके मन में हमारा परम कल्याण समाया हुआ है, वो चाहता है कि हम बहुत मजबूत बने, बहुत शक्तिशाली बने, एकदम ठोक ठोक के इनको हर चीज का अनुभव हो जाए, जीवन के हर परिस्थिति का, हर धोखे का, बहादुर बन जाए। देखो कैसे धोखा दे दिया सेवक राम जी ने जिस पार्टनर के साथ 35 साल जिस व्यक्ति के साथ रहे, आश्चर्य है ना ये भी। और विघ्न किसके पड़ते हैं, असुरों के। दूसरा देव ईश्वरीय यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, परंतु दोनों असुर देवता सब यही है। असुर की परिभाषा, जो दूसरों की स्थिति को गिराता है वो असुर, जो दूसरों की स्थिति को उठाता है वो देवता। ये है सिंपल असुर और देवता की परिभाषा, जो अपने कटाक्ष से वाणी से वार करके दूसरों को गिराता है वो है असुर, और जो दूसरों की स्थिति उठाता है वो है देवता। ये परिभाषा है। तो विघ्न तो पड़ेंगे असुरों के, इसलिए क्या परिस्थिति एकरस रहनी चाहिए, स्थिति एकरस रहनी चाहिए, बस ये। अब फिर से उसी प्रश्न पर आता है कि हमें ऐसा लग रहा है हमारे जीवन में अन्याय हो रहा है तो क्या करना चाहिए, साइकोलॉजिकली क्या करना चाहिए, क्या अपने किसको यूज करना है? नहीं, क्योंकि क्या है, जब कोई व्यक्ति एक निगेटिव फीलिंग के साथ जीता है तो उसका शरीर धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है और शरीर में बीमारी आने लगती है। लंबा समय मन में क्रोध रहा और ये रहा भाव कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो क्या होता है, शरीर बीमार पड़ने लगता है। इसके लिए सबसे पहली बात है कंपैशन, कंपैशन अर्थात करुणा स्वयं पर। माना है बहुत बुरा हो रहा है, सब तरफ से अन्याय हो रहा है, परंतु अपने ऊपर करुणा अर्थात अपने को नीचे गिरने नहीं देना है, और भगवान साथ है, विजय सत्य की ही होगी, लास्ट में विजय सत्य की ही होगी, लास्ट में विजय पांडवों की ही होगी, ये निश्चय, और हम वो पांडव है। और ये सब किस लिए हो रहा है, हमें मजबूत बनाने के लिए, हम शक्तिशाली बन रहे हैं। इसके पहले भी सुनाया था, सूफी संत लिखता है मैं तुमको सिखाता हूं इसलिए नहीं मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, परंतु तुमसे ज्यादा ठोकरें मैंने खाई है इसलिए मैं तुम्हें सिखाता हूं। और वो ठोकरें बाहर नहीं खाएंगे, इसी ब्राह्मण परिवार में खाएंगे। ठाकुर बनना है ना, ऐसे ही बना देंगे, इतनी बड़ी राजाई देनी है तुमको, जो जितना हायर पोस्ट पर रहेगा उसके दुश्मनों की कमी नहीं होगी। इन सच्चाई के मार्ग पर दुश्मनों की कमी नहीं, अंबार लगे हुए हैं। बाबा की किससे दुश्मनी थी, किससे थी दुश्मनी, कहां से खड़े हो गए ये सारे, कुछ किया उन्होंने कभी जाके कहा उनसे, कुछ भी नहीं कहा। और जब विरोध कर रहे थे तभी भी ये भी नहीं कहा कि जाके माफी मांगी, कुछ भी नहीं, साक्षी। और दूसरा ये निर्णय करना कि अपने आप को नीचे गिराना ये व्यर्थ नहीं है। ये दूसरे हमारे बारे में 10 चीज़ें कह रहे, पर ज़रूरी है कि हम उससे प्रभावित हो जाए। ओम मंडली का, एंटी ओम मंडली का रिपोर्ट है, 5-7-9-10 पेजेस का, ऐसा भयंकर रिपोर्ट है, बहुत ही खतरनाक, क्या क्या ये लोग करते और कैसे धर्म को नष्ट कर रहे हैं, भारत की सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं। नाम तो कहते हैं इधर की आत्मा परमात्मा की बातें करते, पर शास्त्रों के विरोध में है ये, गीता के विरोध में है, इनको तो बैन कर देना चाहिए, ऐसी भयानक 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 बातें लिखी है उसमें। कैसे ये हिप्नोसिस से ये जो न्यूरोटिक वुमेन है उनको ये सब कर रहा है, बहुत भयंकर रिपोर्ट है उनकी। फिर एंगर एंड फीलिंग ऑफ इनजस्टिस, ये अगर रहा तो फिजिकल पेन डेवलप हो जाएगा, शरीर के किसी हिस्से में दर्द चालू हो जाएगा, क्योंकि मन में पेन है, वो सोमेटाइजेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, वो एक चालू हो जाएगा। और अपने आप को उस सिचुएशन से थोड़ा अलग करके देखना है, और कई बार ऐसा जब होता है तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि क्रोध अंदर समाया हुआ है। पॉजिटिव इमेजरी, विजुअलाइजेशन, देखना कि ये सब हो रहा है परंतु भगवान साथ है और सत्य विजय मेरी ही होगी, सभी परिस्थितियों से मैं निकलकर बाहर निकल जाऊंगा। और संसार में किसी ऐसा कोई नहीं है कि जिसका विरोध नहीं हुआ। विवेकानंद कहीं गए गांव में, लोगों ने कहा ये देखो चंडाल आया है, जवान आदमी है, तुम भीख मांगते हो, संन्यास लेकर बैठे हो, कमाई करो, नौकरी करो। दूसरे गांव में जा रहे हैं, वहां लोग कह रहे हैं देखो देवता है, सत्कार हो रहा है, कहीं सत्कार, कहीं पर राजमहलों में सो रहे तो कहीं फुटपाथ पर सो रहे, पर योगी अप्रभावित है इन चीजों से। कौन सा ऐसा धर्म स्थापक है जिसका विरोध नहीं हुआ, जहां क्रांति होगी वहां विरोध होगा। इसके लिए इनसे डरना नहीं है, कुछ भी हो जाए। ये यज्ञ की कहानी जो है ये केवल स्टोरी नहीं है, ये अभी हमारे जीवन में हो रही है, और इन लोगों ने जो कुछ किया वो अब हमको करना है। वो ब्रह्मा, वो दादा लेखराज, मैं ही हूं, उनके साथ जो कुछ हुआ वो अब मेरे साथ हो रहा है। परंतु भगवान को छोड़ा नहीं, परंतु मार्ग पर आगे जाते रहे, दोस्त साथी मित्र संबंधी सब छोड़ देंगे, कोई नहीं रहेगा, परंतु आगे बढ़ते जाना है इस निश्चय के साथ कि इंसाफ होगा होगा होगा। फ्योडर डिस्टिविस्की, कल भी शाम एक बात उनकी सुनाई थी, एक दूसरी कहानी है फ्योडर डस्टिविस्की की, कि जीसस क्राइस्ट के गुजरे 1800 वर्ष हो गए। जीसस क्राइस्ट ऊपर से सोचता है कि मैं जब धरती पर आया था मैंने अनाउंस किया था मैं जीसस क्राइस्ट हूं, मुझे सूली पर चढ़ा दिया, पर आज तो आधी धरती मेरी है, तो मैं जाकर देखता हूं क्या हो रहा है। वो वापस धरती पर आता है, ये नॉवेल है फ्योडर डोस्टोव्स्की का, रशियन ऑथर, वापस धरती पर आता है संडे के दिन, एक चर्च के सामने जाके खड़ा होता है, कौन सा चर्च, जहां उसका जन्म हुआ था, जेरूसलम नाजरथ, और वहां से देखता है लोग आ रहे। वो कहता है ये गलती मैं अब नहीं करूंगा, तब मैंने कहा था कि मैं ईश्वर पुत्र हूं तो लोगों ने मुझे सूली पर चढ़ा। वो कहता है मैं अब चुपचाप, क्योंकि ये तो सब जानते, सब मेरे भगत है, पूरी आधी धरती का मैं राजा हूं। वो लोग आते हैं कहते हैं ये कौन है, कहते हैं तुम कौन हो, ये जीसस क्राइस्ट जैसे तुम एक्टिंग कर रहे हो यहाँ बैठे। वो कहते हैं एक्टिंग नहीं, मैं खुद जीसस क्राइस्ट हूँ, मैं स्वयं जीसस क्राइस्ट हूँ। वो कहते हैं तुम एक्टर हो, बहरूपिया हो, निकलो वहां से। वो कहते हैं कैसे समझाऊं, अरे कैसे समझाऊं तब तक पोप आ जाता है। वो कहते जीसस क्राइस्ट को लगता है ये तो मेरा आदमी है, पूरा जीवन इसने मुझे समर्पित किया है, ये लोग तो अज्ञानी है, फिर भी मतलब भगत है खाली, पर पोप तो मेरा विशेष है ना, पोप तो मुझे पहचान ही लेगा। पोप कहता है तुम यू फूल कम आउट, इसको पकड़ो, ये बिल्कुल जीसस क्राइस्ट नहीं, बहरूपिया, ये ढोंगी है, शार्लटन। तो उसको सारे लोग पकड़ते और जेल में डाल देते चर्च के कोठरी में। जीसस क्राइस्ट बेचारा रात भर चर्च में, वो कोठरी में बैठा है अंधेरे में, और आधी रात को पदचाप सुनाई देते आवाज, देखता है तो पोप, वो कहता है आप, पोप कहता है मुझे पता है आप जीसस क्राइस्ट हो, मैंने तो तुम्हें वहीं पहचान लिया था। जीसस को लगता है अच्छा, पर वो कहता है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बिजनेस में तुम इंटरफियर मत करो क्योंकि तुम्हारे नाम पर ही सब चल रहा है। जो तब हुआ था अगर यहां रुके तो अब भी वही होगा, वही होगा, इसलिए कृपया करके चुपचाप जाने दो और जो कुछ हमारा चल रहा है ठीक ठाक चलने दो, बना बनाया सब गड़बड़ मत करो अब यहां आके। इंसान यही होता है यह संसार, तो ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखना इस संसार से कि संसार मुझे समझे, मेरी इच्छाओं को, मेरी भावनाओं को, मेरी महानता को ये लोग समझ जाए मैं कितना महान हूं। जितना ऐसा सोचोगे उतना क्या समझेंगे, तुम ही गड़बड़ करते हो, हटाओ। तो क्या सीखना है, ये जो कुछ हुआ एक तरफ से तो अन्याय दिख रहा है पर अंदर से इसी से सीख रहे हैं सब लोग। दूसरा, जो उस दिन हमने ओम राधा का देखा, 59 प्रश्न पूछे गए कोर्ट में, इसका क्या फायदा हुआ? नहीं, एक फायदा हुआ, मम्मा कचेरी करती थी जब माउंट में आए, वो कचेरी कैसे करना वो कहां से सीखा, वो निर्भयता कहां से आई? 21 एज, 21 साल की कन्या जेल कोर्ट में जाती और ऐसे उत्पटांग उसको सवाल पूछे जाते। 30-40 तो उस दिन सुना है, 5-6 तो छोड़ दिए थे, वो बहुत ही खतरनाक थे, वो उसको कैसे उलट पुलट कर दिया। तो ये बहुत काम आया बाद में, कहाँ काम आया, मधुबन में कचेरी होती थी। वैसी एक दादी प्रकाशमणि का भी उदाहरण है, दादी प्रकाशमणि और मोहिनी बहन एक बार अमृत वेला माता का रूप धारण किया, ऐसे घूंघट वगैरह ओढ़ के, और वो गुदर घुस गए अंदर मधुबन निवासियों को देखने के लिए क्या कर रहे और देखा जो जो सो रहा है उनको नोट किया उस समय और फिर सबको बुलाया उन जिन जिनको नोट किया था। हाँ, किसी ने ऊपर से कहा, शायद राजू भाई थे, कि माता जी यहां क्या कर रहे हो, ये भाइयों का स्थान है। फिर उन्होंने कहा ऐसे दिखाया हम कौन है फिर वो भी उनके साथ आ गए, शायद राजू भाई शायद तो वो गए और एक एक को नोट किया, कौन सो रहा है, कौन सो रहा है, कौन सो रहा है, और फिर उनको बुलाया। अच्छा, मुरली सुनी? सबने कहा हाँ दादी हमने मुरली सुनी। अच्छा, नाश्ता किया? हाँ दादी नाश्ता किया। अच्छा, सैर करके आ गए? हाँ दादी अभी नक्की से सैर करके आए। जब अच्छा सेवा चालू है? हाँ दादी बहुत अच्छी चालू। जब इतना सब अच्छा चालू है तो अमृत वेला क्यों नहीं उठते पकड़े गए ना तो मम्मा ने ये जो कुछ है यज्ञ में जो कुछ हुआ है वो अब हो रहा है, वो हिस्ट्री समझ के छोड़ नहीं देना है, अब नाउ। और हमारे साथ यदि हमको लगता है अन्याय हो रहा है, सीनियर्स जूनियर्स साथी, एक सूक्ष्म ये है कि ये जो कुछ हो रहा है हमारा ही किया हुआ है, हमारा ही किया हुआ है, हमने किसी के साथ अभी हमने इस जन्म ने किसी की कोई निंदा नहीं करी, पर कोई व्यक्ति है जो दिन रात निंदा में लगा हुआ है, पर हमने तो उसकी निंदा की होगी। हाँ, तो और दूसरी एक चीज, ये देवी देवता धर्म की आत्मा है, इनका भी तो हिसाब है, इन्होंने भी तो कुछ किसी जन्म में विकर्म तो किया ही है, क्योंकि सारी देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हर जन्म में क्या होगी, जमींदार, कहीं राजा, कहीं साहूकार, कोई बड़े पोस्ट पर ही होगी, राय बहादुर क्या क्या होता है ना, उस टाइप के बेचारे किसी किसान की जमीन हड़प ली, वो किसान, उसकी पत्नी, उसके बच्चे मर गए, अब वही एंटी ओम मल्टी बनकर आ गए। तो ये सारा हिसाब है जो यहां चुकत हो रहा है, इसलिए अच्छा है, रादर आह्वान करना चाहिए, जिस जिसके आज सारे दिन पर हिसाब है चुकत हो, फटाफट आओ, अरे टाइम का है, आई एम लेट। वो एलिस इन वंडरलैंड का रैबिट है ना, वो कहता है मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है, आई एम लेट, जाओ जल्दी जल्दी, किसको अपमान करना है आ जाओ फटाफट, किसको तुमको कुछ बाधा क्रिएट करनी है, किसको निंदा करनी है, किसको ग्लानी करनी है, किसको टांग खींचनी है, किसको चोरी करनी है, किसको धक्का देके जाना है, जो करना है फटाफट करो, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, आई एम रनिंग लेट। तो तो जितना जिसको करना है, बेटा है मेरा, सारे सब इतना पाल के उसको बड़ा किया, आखिर में माता जी को वृद्धाश्रम में डाल के आ गया। हाँ हाँ, माता जी को खुश होना चाहिए, अच्छा किया तुमने, मैंने भी तुमको डाला था किसी जन्म में। होनो पोनो पोनो, उस दिन भी कहा था इंग्लिश क्लास में, चार बातें हैं उसमें कि फॉरगिवनेस, होनो पोनो पोनो, वो हवाइयन लिटरेचर है, हवाइयन संस्कृति में ये मंत्र होता है कि जिसमें आपको माफ़ी मांगनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है उस व्यक्ति के लिए, हर एक से माफ़ी मांग लो सुबह सुबह। तो हमने बहुत विकर्म किए, जितने हम भोले दिखते हैं ना उतने हम हैं नहीं। ये जो भोली भोली सूरत है ना हमारी, कितने मासूम और योगी जैसे दिखते हैं एकदम। अंदर कुछ और है, पॉलीसाइकिक है, मैन इज पॉलीसाइकिक, वी आर लीजन, एक नहीं है हम, बहुचित्तवान है, कितने सारे मुखौटे हैं, उस मुखौटों के ऊपर का ये मुखौटा है योगी वाला, उसके पीछे भोगी, रोगी, ढोंगी, सब है। अध्यात्म अर्थात खुद को देखना, जो मैं जैसा हूँ वैसा, बस अपनी खुद। तो कुछ भी हो जाए पर ये नहीं भूलना है कि इंसाफ होगा, जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन समय ने आंखें खोली, इंसाफ 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 होगा, बहता हुआ आंख में उम्मीद नहीं है, आंसू का मोल तो है खरीद नहीं है, तराजू उठेगा तो इंसाफ होगा, होगा 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 इंसाफ होगा, बहती नदियाँ रुकती नहीं है, डूबा डूबा तारा, तारा डूबा तो भी मुक्ति नहीं है, गर्दन पर है कर्ज लहू का, गर्दन देकर ही माफ होगा, इंसाफ 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 होगा। ओम शांति।
जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद साफ होगा, जिस दिन समय ने आंखें खोली, इंसाफ 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 होगा। जिस दिन आकाश बेदाग होगा।